सभी वैष्णव के चरणों में रखो। कल उतना भगवान को लेकर आकाश खुल गई, कृष्णा उतना भगवान को लेकर आकाश खुल गई। छोटे से बालक, छोटा सा बालक थे भगवान, छह दिन के थे। तो जब भगवान ने ऊपर से देखा तो भयभीत हो गए, डर गए, और डर के मारे उन्होंने उतना के स्तनम को और जोर से पकड़ लिया। उतना के उतना के स्तनम को जोर से पकड़ कर उन्होंने उनकी प्राण पूरी तरह से कर लिए। और जैसे ही किसी असुरी व्यक्ति की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। जैसे आपने देखा कि श्री राम ने जब जब वो हरि को मार दिया था तो मारने के बाद वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया, राक्षस स्वरूप में आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी जो भगवान ने पूतना की सारी शक्ति निकाल ली, उसके प्राण हर लिए, तब वो पूतना अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गया, उसका विशाल देह प्रकट हो गया। अब भगवान विचार करने लगे कि अगर ये ब्रज में गिर गई तब मेरे जो परिकर लोग हैं वो बेचारे तब के मर जाएंगे, तो मुझे किसी भी स्थिति में मुझे अपने परिकरों को नहीं मारना है। तो भगवान ने क्या विचार किया कि इसका इसे कंस के बगीचे में गिराना चाहिए। अब सच यदि पूतना इतनी विशाल थी, भगवान छोटे से थे, लेकिन हाथ में तो उनके हाथ गिराना है, तो पूतना को किसी तरह से भगवान ने कंस के बगीचे में जाकर गिरा दिया। और कंस के बगीचे के जितने सारे पेड़ पौधे थे सब कुछ नष्ट कर दिया। भगवान ने मानो हिंट कर दिया है लोगों कंस को कि अब तेरा वाइंडिंग अप चालू हो गया, तूने पूतना को भेजा था, ये तो तुझे लौटा दिया। वो जो युद्ध के समय जब कोई बड़ा अस्त्र इस्तेमाल करता है तो उसके उसके प्रत्युत्तर में दूसरा उस दूसरी साइड वाले बड़ा अस्त्र इस्तेमाल करता है, और जब एक तरफ के लोग हार जाते हैं तो उनका जवाब दे जाता है कि भैया हम बलशाली हैं। तो भगवान पूतना को वहां पर गिरा कर एक संकेत देना चाहते थे कंस को कि कंस अभी भी सुधर जाए। तो पूतना वहां पर जब गिरी, पूतना का जो विशाल काय देह था, एकदम विशाल काय देह, ऐसा ऐसा इतना विशाल काय देह कि उसके शरीर शरीर इतने हल इतने 12 मील फैल गया था। एक बड़ा विषय, एक बड़ा पहाड़ अगर गिर जाए अचानक से, तो जब पूतना जब गिर रही थी तो चिल्ला रही थी जोर जोर से, और गिरने के बाद जब भगवान पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन असर किस पर हुआ? ब्रजवासी पर असर हुआ। अधिक से अधिक ब्रजवासी लोग सब बेहोश होकर गिर गए। ऐसा लग रहा था उन पर कि मान लो किसी ने वज्रपात कर दिया, और ब्रजवासी लोग बेचारे भोले भाले थे, उन पर एक वज्रा अचानक से किसी ने वज्रपात कर दिया, किसी ने अचानक से एक बड़ा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे 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 बच्चों को अगर अचानक से फटाका फूट जाए वो बहुत डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि रोने लगते हैं। तो वैसे ही कुछ इतनी बड़ी आवाज़ हो गई उतना के गिरने की कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ के लिए जैसे आवाज़ थी, और वो समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्या हो गया, और उसमें वो बेचारे बेहोश होकर गिर पड़े। अब भगवान की स्थिति ऐसी थी कि भगवान को स्वर्ग नहीं पड़ने वाला, तो भगवान उसके छाती पर या वक्ष सर्वर थे, भगवान वहाँ पर खेल रहे थे अपने हाथों से, दोनों हाथों से थप थप कर रहे थे, पैरों से आवाज़ कर रहे थे, और अपने आनंद के साथ भगवान खेल रहे थे। तो शुकदेव गोस्वामी पूतना के विशाल पूतना के इस विशाल देह का वर्णन करते हैं कि उसके देह की स्थिति क्या थी। जब वो गोकुल में आई थी तब एक सुंदर स्त्री बनकर आई थी, और सब लोग उसको लक्ष्मी जी बोल रहे थे। अब यही लक्ष्मी जी की डुप्लीकेट लक्ष्मी जी जब वास्तव में अपने असुर स्वरूप में आ गए थे वो कैसे दिख रही थी। तो शुकदेव गोस्वामी जरा अपना कैमरा उसकी तरफ घुमा रहे हैं, शुरुआत करते हैं दांत से। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके दांत बड़े बड़े हल की तरह थे, हल तो छोटा था, हल तो छोटा रहता है, लेकिन पूतना के जो दांत थे वो हल से भी बड़े थे। जो राक्षस होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि उनको मांसाहार खाना होता है। जो मनुष्य होते हैं उनके दांत जो होते हैं छोटे छोटे रखे गए, क्यों? क्योंकि वो अच्छा आहार कर सके। पशु जो मांसाहार करने के लिए ज्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए उनके लिए, प्राणियों के लिए जैसे शेर चीता आदि के लिए एक विशेष प्रकार के दांत दिए जाते हैं। तो राक्षसी पूतना के लिए भी बड़े बड़े हल जैसे उनके दांत थे, ताकि उसको मांस चबाने में थोड़ी आसानी होती होगी। उसका नाक, पूतना का जो नाक था वो पर्वत की कंदरा के समान घेरे थे। जिस तरह से ऊंचे पर्वत से कुछ दिखाई दे वैसे पूतना के नाक दिखाई दे रहे थे, गहरे कुएं के समान। स्तन, एक पर्वत की चट्टाने देखी होगी, पर्वत की चट्टाने, दो पूतना के जो दो स्तन थे वो बड़े बड़े चट्टानों के समान लग रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि मानो किसी ने ब्रज में ये दो नए नए पहाड़ आके रख दिए। इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे पूतना का देह था, विशाल काय थे। केश, पूतना के केश कॉपर की वायर होती है ना, कॉपर की वायर के जैसे उसके बाल हो गए थे, लाल 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 लाल, बहुत भयानक लग रहे थे और चारों तरफ फैले हुए थे। ऐसा नहीं कि उसने कुछ उसके जैसे जिस जैसे पूतना ब्रज में आई थी वैसे जिसके बाल एकदम पूरा अपोजिट, एकदम सब जगह कई 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 स्क्वायर मीटर्स में, कई स्क्वायर किलोमीटर में उसके बाल फैले हुए थे। उसकी आंखें अंधकार से भरे हुए गहरे कुएं के समान थी। आंखों में ऐसा लग रहा था कि एक अंधेरा गहरा कुआ है और उसमें कई कई वर्षों से कोई उसमें पानी के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी आंखों की जो उसकी स्थिति थी वो गहरे कुएं के समान थी। उसकी जो भुजाएं थी वो एक बड़े पुल के समान थी, जैसे कोलकाता का बड़ा ब्रिज हो वैसी बड़ी। आप, मैं इमेजिनेशन दे रहा हूँ कि आप इमेजिन कर सकें कितना बड़ा हो सकता है। तो कोलकाता का जो ब्रिज हो सकता है, हावड़ा ब्रिज है, उस विचार कीजिए कि उतनी बड़ी उसकी दो भुजाएं थी, बड़ी बड़ी। पेट कैसा था, एक कोई बड़ा सरोवर है लेकिन सूखा हुआ, बहुत बड़ा सरोवर है लेकिन ऐसे सूखे सरोवर के समान उसके पेट, उसका पेट लग रहा था। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से उसका वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि जैसी ब्रजवासी गोपिया और गोपघोष में आई तो गोपिया है वो पहले दौड़ पड़ी किसके लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए कि कृष्ण कहाँ है। और उन्होंने कृष्ण को देखा तो कृष्ण उस पूतना नाम के असुरी के स्तनों पर खेल रहा था। ये जो गोपियां है दौड़ पड़ी वहां पर बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के कि ये राक्षसी के जग जाएगी हमें मार सकती है, इसका उन्हें तो भय नहीं था। बस वो गई पूतना के विशाल काय देह पर चढ़ गई और कृष्ण उठा ली और आ गई। अगर विचार करना चाहिए यदि इतना विशाल काय देह पड़ा हो, राक्षसी हो, तो किसमें इतनी हिम्मत होगी जाकर उसके देह पर चढ़ जाए। अरे अपने जान, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या उन्हें अपने जान की परवाह नहीं थी, क्या उन्हें यह भय नहीं सता रहा था कि क्या राक्षसी से जग जाएगी और वो खा लेगी, ये भय होता है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और हमारा आचार्यगण कहते हैं नहीं, पूतना से उन लोगों को कोई भय नहीं लगा। उसका कारण था कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था, निष्कपट निश्चल जो प्रेम था, उसके सामने उनका सुख दुख उनके लिए कुछ नहीं था। वे देखना चाहते थे कि श्री कृष्ण सुखी रहे, उनका एक ही उपदेश था कि कृष्ण संकट में है और कृष्ण को बचाना है, उसमें अपने सुख और अपने दुख की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और इसी तरह से वे लोग ब्रज गोपिया अपने सुख और दुख की परवाह किए बिना पूतना के देह पर चढ़ गए। देखिए ब्रज परिक्रम के भाव को हमें समझना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है, तभी हम इस चीजों को समझना पड़ेगा कि ब्रज परिक्रम का जो भाव है उससे उनके प्रेम का पता चलता है कि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है। और हमें भी वैसे ही प्रेम श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। भगवान कुछ चाहते हैं कि हम लोग उनसे संबंध जुड़े, कैसे? भगवान चाहते हैं कि हम उनको अपना स्वामी माने, पुत्र माने, उनको अपना सखा माने, प्रियतम माने, तो भगवान चाहते हैं कि हम उनसे संबंध जुड़े। इसी कारण भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेके विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं और सारे भक्तों को, सारे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनका ये प्रयोजन होता है, ताकि भगवान की दिव्य लीलाओं को देखकर जो सारे जो संसार के भक्त जीव है उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, उनसे प्रेम करने लगे उनकी लीलाओं को सुनकर देखकर। और वे जिस तरह से वृंदा ब्रज के जो परिघर है वैसे जैसे वे प्रेम करते हैं कृष्ण से, वैसा ही प्रेम हम सब करें, ये कृष्ण की इच्छा होती है। तो ये ब्रजवासी लोग, इनका प्रेम कैसा है? ब्रजवासियों का प्रेम से उदाहरण आता है राधा रानी के विषय में। राधा रानी ललिता विषय ललिता से कहती है, मोर सुख सेवने कृष्ण रसुख संगम में अत एव देह देन दान, कृष्ण मोरे कांता करे कहे मोरे प्राणेश्वरी मोर हय दासी अभिमान। राधा रानी कहती है ललिता से कि ललिते मेरा सुख किसमें है? मेरा सुख है श्री कृष्ण की सेवा में। अभी यहां पर ध्यान देना चाहिए, यहां पर कृष्ण के सुख की बात की जाती है, ना कि अपने सुख। मेरा सुख किसमें है? कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का सुख संगम में। और कृष्ण को किसमें सुख मिलता है? मेरे संगम में, मतलब मेरे साथ रहने में। मेरे साथ जब वो रहते हैं, मुझे आलिंगन करते हैं, तो उससे उनको सुख मिलता है। अतएव देह देना दान, और इस कारण से मेरा जो देह पूरी तरह से उनकी सेवा में लगा रहता है। कृष्ण मोरे कांता करे, कृष्ण मुझसे कहते हैं कि तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। इतना जानते हुए भी कि मैं कृष्ण के सब कुछ हूं, लेकिन मेरा भाव क्या है? मैं दासी हूं, मोर है दासी अभिमान। मुझे ये अभिमान है कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूं, और मुझे दासी बनकर उनकी सेवा करनी, कृष्ण को सुखी करना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपवासियों सारे जो नंद बाबा आदि गोपों को ये बता दिया कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, वास्तविक पूजा यदि करनी है तो गोवर्धन की करनी चाहिए, वास्तविक पूजा करनी चाहिए तो वो गौ की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तो ये जो ब्रजवासियों के बीच में ये जो इंद्र की पूजा करने की जो प्रथा थी, लौकिक प्रथा थी, और काफी समय से चली आ रही थी, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मीमांसा सिद्धांत समझा कर भी वे लोग एक तरह के से नहीं मान रहे थे, लेकिन जब अंत में भगवान ने कहा कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवान ने कहा कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, इतना सुनते ही सारे ब्रजवासी बोल गए कि अब इंद्र को गया भाड़ कि अब तक तो भगवान समझा रहे थे कि ये लौकिक प्रथा है, ये शास्त्र में नहीं है, ये है वो है, तब तो लोग ठीक है हाँ, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, इसे बारिश होती है, इसे मंगल होता है, ये होता है वो होता है, तोड़ नहीं सकते, इतना समझा दिया। लेकिन भगवान ने कह दिया कि इससे मैं सुखी नहीं होऊंगा, ये पूजा करने से सुखी किससे होऊंगा कि आप मेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, उससे मैं सुखी होऊंगा। तो इतना सुनकर सारे ब्रजवासी निर्णय कर लिया कि अब कोई आवश्यकता नहीं है इंद्र की पूजा करने की, कि हमारा कृष्ण, हमारा जो प्राणनाथ, हमारा जो प्राणनाथ है, जिसको जिसके लिए हम हमारा सब कुछ निछावर है, जो हमारे जीवन धन है, हमारा प्राण धन है, ऐसा श्री कृष्ण हमारे किसी कार्य में प्रसन्न नहीं है, वो कार्य क्यों कर रहा है? तो उन्होंने इंद्र की पूजा भगवान की प्रसन्नता के लिए बंद कर दी। तो राधा रानी भी यहाँ पर कहती है, आगे कहती है, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय उपरे धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। हे सखी, कृष्ण हमारे जीवन है, कृष्ण हमारे प्राण धन है, हमारे प्राणों के भी प्राण है, मैं यही चाहती हूं कि उन्हें अपने हृदय में रखूं और उनकी सेवा करूं। मेरा ध्यान एकमात्र इतना ही रहता है कि मैं किस तरह से कृष्ण को सुखी करूं। तो जो अपने इंद्रियों के लिए कार्य किया जाता है वो काम है, और जो कृष्ण के इंद्रियों को सुखी करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रेम है। ये सिंपल इसका डेफिनेशन है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है कृष्ण के प्रसन्नता के लिए और कृष्ण के भक्तों की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे हम कैसे जानते हैं? यदि उनकी भक्त उनके प्रेमी भक्त साधु जन यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो वे शीघ्रातिशीघ्र को प्रसन्न हो जाते। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है उनके प्रेमी भक्तों को सुखी करना, उनके प्रेमी भक्तों की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना। और सबसे बड़ी सेवा होती है गुरुजनों के साधुओं के आदेशों का पालन करना। सबसे बड़ी सेवा साधु की क्या होती? गुरुजनों की क्या सेवा होगी? कि उनका शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करे। जो आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य है, जिस तरह से पिता है यदि और पुत्र यदि उसका आज्ञा का पालन करता है तो स्वाभाविक है कि पिता का जो पिता के धन पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। उसी तरह श्री कृष्ण साधु के गुरुजनों के धनबंदी है। ये उनका धन है। सबसे बड़ा धन उनका क्या है? श्री कृष्ण उनका धन है। और वे यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए, यदि आप उनकी सेवा करेंगे उन्हें संतुष्ट करेंगे तो उनका जो धन है कृष्ण प्रेम धन उस पर शिष्य का सहज अधिकार है। इसलिए उनकी सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। उनको सुखी करना, क्योंकि उनको प्रसन्न करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्रज की गोपियों को अपने मरने की चिंता नहीं थी, अपने सुख या दुख की चिंता नहीं थी। उनकी चिंता थी कि कृष्ण को बचाना है। उनमें यह धारणा नहीं थी कृष्ण भगवान, उनमें यह धारणा नहीं थी कि श्री कृष्ण भगवान है। उनमें यह धारणा थी कि कृष्ण हमारा लाडला है, यशोदा का लड़का है, हमारे ब्रज का प्राण है। ये उन ब्रजवासियों की, उन ब्रज गोपियों की भावना थी और इसको बचाना है। चाहे पिता से लड़ना पड़े या किसी से लड़ना पड़े, इसको बचाना है। तो वे दौड़ कर उसको लाई और उसकी आप उसको दौड़ कर तो ले आए, लेकिन आप चिंता हो गई कि कहीं इस पूतना का जो विष है वो इसके अंदर न चला गया, कहीं इसके नख हाथ में कुछ लग न गए बच्चे को। 6 साल 6 दिन का छोटा बच्चा है, छोटा छोटा 6 दिन का बच्चा है, तो चिंता हो गई उन लोगों को। तो उन लोगों ने प्रथम ये कार्य किया कि उसको गाय की पूंछ, पहले तो उस ऊपर से गाय की पूंछ घुमाई। गाय की पूंछ घुमाने से आज भी जितनी सारी अशुभ चीजें हैं या तो मंगल होता है, अमंगल है या फिर किसी की नजर लग जाती है छोटे छोटे बच्चों को, तो आज भी गांव में तो ये उपाय है, शहर में वालों को तो उपाय पता ही नहीं है कि शहर में गाय ही नहीं है। लेकिन आप अपने ऊपर ही प्रयास करेंगे, जरा गाय की पूंछ अगर आप अपने सर में घुमा लगाएंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कितना मंगलमय है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शहर में गाय नहीं है, अन्यथा गौ के संबंधित कई, अगर गौ के संपर्क में रहेंगे, गौ माता के संपर्क में रहेंगे तो हम कभी अस्वस्थ होंगे नहीं। तो सबसे प्रथम कार्य गोपी ने यह किया कि भगवान के ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। उसके बाद भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया, डेटॉल से नहीं, सेवलॉन से नहीं, गोमूत्र से स्नान करवाया। उसके बाद स्नान करवाकर उस पर गौ माता के चरणों की जो गो धूली है उससे भगवान के शरीर को उसको मला, मतलब पूरी तरह से उसको भगवान गो धूली से क्योंकि भगवान के शरीर तो मल रहे थे। उसके बाद इतना सब होने के बाद गोबर की सहायता से गोपियों ने द्वादश केश, हम लोग जो ओम केशवाय नमः इस तरह से द्वादश अक्षर जो तिलक है उसको लगाने लगे। अब देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उस पर गोपियां भगवान की ललाटपन करती है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। इस तरह से भगवान के नामों से भगवान की रक्षा की जा रही थी। सहज ब्रजवासी लोग हैं, सहज विश्वास है। सबसे पहले उपाय ये नहीं किया कि पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, ये करो वो करो, नहीं वैद्य को बुलाओ, नहीं, जो नेचुरल चीज है जो करने जो अवेलेबल चीज है गाय के संग, गौ माता कितनी बड़ी चिकित्सक डॉक्टर है हमारे, कि पहले तो गोमूत्र से स्नान करवाया, फिर गो धोने लगाई, गोबर से तिलक लगाया, उसके बाद ये इमीडिएट कार्य कर लिया, एक भय था कि बच्चा ठीक रहे, उसके बाद लग रहे कि हाँ अभी ठीक है, अभी ये कार्य हो गया। अब उन्होंने वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान की रक्षा करना चाहा, तो सबसे पहले उन्होंने आचमन किया। अब तक उन्होंने आचमन नहीं किया था, अब उन्होंने आचमन किया और अंगन्यास और बीजन्यास के माध्यम से वे भगवान के वैदिक मंत्रों के माध्यम से रक्षा करना चाहते। ये जो तिलक है, जो तिलक है वास्तव में ये हरि मंदिर कहते हैं, वैष्णव जन इसको हरि मंदिर कहते हैं। ये जो तिलक की ये जो दो धाराएं हैं, धार है, ये मंदिर है, मंदिर की तो दीवार है और ये जो तुलसी रखी गई है, तुलसी जैसी, वो मंदिर की नींव है और इसमें हम लोग भगवान को स्थापित करते हैं अपने शरीर पर। ओम केशवाय नमः, तो ओम केशवाय नमः भगवान केशव को हम लोग अपने ललाट पर स्थापित करते हैं। उसी तरह से शरीर में 12 जगह का तिलक करना चाहिए, अरे जिस पर जिसके 12 अंगों में भगवान की विविध अवतारों को बिठाया है उस पर उसका क्या कोई ग्रह इत्यादि उखाड़ सकता है, ये देवता लोग क्या परेशानी दे सकते हैं उस जीव जिसके शरीर पर भगवान निवास करते हैं। ये जो ग्रह इत्यादि की जो पोटेंसी होती है, ऐसे कहते हैं ना ग्रह, कि हमारे ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे तो वो इसी से डरा देंगे, आपका शनि खराब है, आपका बुध यहाँ पर है, आपका वो वहां पर है, आपका ये यहाँ पर है, वो तो उसी के मालूम है कौन कहाँ पर है, लेकिन इस तरह से डरा देगा कि व्यक्ति सोचे कब करना क्या होगा। देखिए अभी शनि को शांत करना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा, तो आपको ये कितना पैसा लगेगा, अच्छा लीजिए पैसा करने से ये सारे देवता शांत हो जाएंगे, नहीं, शांत होंगे जब वे देखेंगे कि हम लोग भगवान के कीर्तन में श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब ये लोग देखेंगे कि हम लोग भगवान की भक्ति में अपना शरीर लगा रहे हैं तब वे कभी भक्तों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। जब वे देखेंगे कि हमारे शरीर पर द्वादश आदि अक्षर से तिलक लगाए हुए भगवान विराजमान है हमारे शरीर पर, तो क्या किसी देवता की हिम्मत है कि उस भक्त को छेड़ दे। स्वाभाविक जो भक्त लोग जो बाहर कार्य करते हैं, काम करते हैं, उन्हें तिलक लगाने में संकोच होता है, कोई बात नहीं, ये तिलक मत लगाइए, 11 तिलक तो लगा ही सकते हैं शरीर के अंदर, जो शरीर के अंदर होता है उसे लगाने में क्या संकोच है, एक तिलक आप लगा नहीं सकते, आपके ऑफिस में लोग आपको मजाक उड़ा लेंगे ऐसा लग रहा है, तो आप अन्य तिलक लगाइए और रात के समय सोते हुए 12 तिलक लगाइए। मुझे याद है जब मैं ऑफिस जाता था, अभी तो मंदिर में पूरी तरह सेवा में, पहले बिरला ग्रुप में सेवा करता था, तो वहां पर मैं तिलक लगाकर जाता था, तो कुछ समय तो शुरुआत में उन्होंने मजाक उड़ा रहे थे कि साधु जी आ गए। जैसे मैं गाड़ी मंदिर के कंपनी के अंदर घुस जाता था तो वॉचमैन बोलता था कि हरे कृष्णा वाले आ गए, तो वहां से लेके धीरे धीरे इन सबको बोलने की ऐसी आदत पड़ गई, गेट के वॉचमैन से लेके जो हमारे जो कंपनी के जो वीपी थे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो तो हरे कृष्ण रोज बोलते थे, ये बस तिलक का कमाल है। और पहले अगर जैसे मैं कमरे में जाता था तो वहां पर बोलते थे कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है, पहले काम अलग कि आपका सैटरडे का प्रोग्राम कैसे हुआ, क्योंकि उनको पता था, बताया कि हम हरे कृष्ण वाले हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर आप आइए, पहला प्रश्न मुझे हमेशा ही पूछते थे। और एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं किसी इंडक्शन में जा रहा था, मैंने उनकी ट्रेनिंग थी मेरी, तो मैं किसी कमरे में पहुंच गया तो वहां पर अचानक से उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वहां का, वो उठ के खड़ा हो गया, कहा कि हरे कृष्ण वाले आ गए, तो उसने तुरंत मुझे खींच के अंदर ले लिया और कड़ी लगा ली और देखी बैठी और कीर्तन सुनाया और उसका जो रूम था शॉक प्रूफ रूम था। उन्होंने कहा ये शॉक प्रूफ रूम मतलब आवाज बाहर नहीं, साउंड प्रूफ रूम है, आप जितना करता कीर्तन जो बजाना बजाइए। तो मैं गाता था वो उसका जो टेस्ट था उस पर वो अपना मृदंग जैसे बजा लेता था। इस तरह से करीबन 6-7 महीने के लिए वो मुझे रोज बुलाता था। उसने कहा कि मैं आपके ऑफिस में आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोल दूंगा कि आपका मेरे पास कुछ काम है, आपको छोड़ दिया करें। तो लगभग मैं रोज जाया करता था उसके पास, 6 महीने के लिए हमें रोज संकीर्तन करते थे उसके कमरे में। तो ये प्रभाव है, तिलक का प्रभाव है। इस तरह से तिलक लगाने में समाज में संकोच नहीं करना चाहिए कि भगवान के दर्शन, आप लोगों का दर्शन करने मात्र से संसार के जीव पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के तिलक का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए गर्व के साथ लगाना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं, लगाना तिलक मार के जाना चाहिए। इस तरह से जब भगवान के गोपियों ने अब वैदिक मंत्रों के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण की रक्षा करनी चाहिए, तब वे भगवान के विविध अवतारों से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अज, हे भगवान अज, इस बालक के पैरों की रक्षा करो। अज का अर्थ है जो अजन्मा है, भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है। भगवद गीता में स्वयं कहते हैं जन्म कर्म चले दिव्य, मेरे जन्म कर्म सब अलौकिक है, दिव्य है। तो भगवान का जन्म हम साधारण बद्ध जीवन जैसा नहीं है। कैसे समझा जाएगा? अरे जिसके जन्म के समय जब भगवान जन्म लिए थे उस समय सारे देवता लोग ब्रह्मा शंकर इत्यादि स्वागत करने के लिए जेल में आए थे। ऐसे कोई जीव है जिसको पता चलता है कि जो हॉस्पिटल में जन्म लिया है तो वहां पर उसके स्वागत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति जी आ गए, लोकल सारे डीएम सीएम सब लोग आ गए, ऐसे कभी सुना है? और जब भगवान जन्म लिए थे तो अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना दी। तो ये है भगवान का अलौकिक दिव्य जन्म। तो वो कहती है कि हे ओम अजाय नमः, ये भगवान है जो तेरे पैरों की रक्षा करे। ओम मणि मते नमः, हे भगवान भगवान मणि तेरे दोनों जानों की रक्षा करे। फिर वो कहती है कि ओम यज्ञ पुरुषाय नमः, ये भगवान यज्ञ पुरुष है वो तुम्हारे जान की रक्षा करे। फिर वो कहती है ओम अच्युताय नमः, भगवान अच्युत तुम्हारे कमर की रक्षा करे, भगवान हयग्रीव तुम्हारे पेट की रक्षा करे, भगवान केशव का अर्थ है जो ब्रह्मा आदि शिव के मतलब ब्रह्मा शिव मतलब शिव जी उसके जो नियंता है वो तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। ओम ईशाय नमः, इस भगवान तुम्हारे छाती की रक्षा करे। ओम इनाय नमः, इन मतलब भगवान सूर्य तुम्हारे कंठ की रक्षा करे। ओम विष्णुवे नमः, तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करे। ओम उरुक्रमाय नमः, भगवान तुम्हारे मुख की रक्षा करे। ओम ईश्वराय नमः, तुम्हारे मस्तक की रक्षा करे। इस तरह से चरणों से लेकर मस्तक तक एक एक भगवान के अवतारों को भगवान के ही शरीर पर स्थापित करके वे उन अवतारों से प्रार्थना करती है कि हमारे इस लाला की रक्षा करो। श्रीमद् भागवत में मैंने कल वर्णन किया था कि नारायण कवच। देखिए हम लोग संसार में रहते हैं, कातो जगत में रहते हैं, तो यहाँ पर हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा कौन दे सकता है? भगवान के अलावा कोई है क्या सुरक्षा देने वाला? जब द्रौपदी भगवान के नामों से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है संसार में, भगवान के नाम और भगवान में अभिन्न है। जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था हरी सभा में, क्षत्रियों की सभा में, वो ऐसी सभा थी जहां पर इस संसार के बड़े बड़े महारथी उपस्थित थे। ऐसे क्षत्रिय वहां पर उपस्थित है जो शायद ही आज पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्षत्रियों का समाज ना कभी एकत्रित नहीं हो सकता, ऐसा वीर क्षत्रियों का समाज वहां पर उपस्थित था। और वहां पर एक कुल मधु का वस्त्रहरण हो रहा था। द्रौपदी भगवान की भक्त थी पूरी तरह से, और उसके गुरुजनों ने उसको उपदेश दिया था कि जब जब तुझे संकट आए दुष्कर, तो भगवान श्री कृष्ण को याद कर। उसके दुर्वासा ऋषि ने एक बार कहा था कि उस पर बहुत बड़ा संकट आएगा, तो हर संकट में तुझे भगवान श्री कृष्ण को याद करना। तो द्रौपदी यहाँ पर पहले तो अपना प्रयास कर रही थी, जब उसको नग्न करने का प्रयास किया गया, दुशासन उसको खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, तो वो अपने प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से अपने आप से रोक लो। लेकिन जब दुशासन ने बड़ा झटका दे दिया उसको, तब तक उसको पता चल गया कि आप मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तब उसको उसके गुरुदेव के वचनों का स्मरण हुआ और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, यहाँ पर मेरी लाज, यहाँ मेरी लाज बचा लीजिए, मेरे यहाँ पर घोर अपमान हो रहा है, इतने सारे क्षेत्र के समाज में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, रक्षा करो। तो भगवान के नामों को पुकारने मात्र से वहां पर भगवान ने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने सारी का अवतार ले लिया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। सारी का अवतार ले लिया, दुशासन जी खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और भगवान भी साड़ी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इतनी साड़ी बढ़ गई, इतनी साड़ी बढ़ गई, दुशासन कहने लगी, ये नारी है कि साड़ी है कि साड़ी ही साड़ी है। दुशासन समझ नहीं पाया और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक स्त्री को नग्न नहीं कर सका और साड़ी खींचते खींचते बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे सभा में साड़ी ही साड़ी पड़ी हुई। ये देखिए भगवान के नाम की महिमा। अजामिल मरने के कगार पर था, पूरे जीवन उसने थोड़ा सा जीवन में शुरुआत में भजन किया था, लेकिन अधिकतर समय उसका विषयों में चला गया अजामिल का। और अंत समय में जब वो मरने वाला था, उसने अपने पुत्र का नाम लिया और पुत्र का नाम नारायण था, तो नारायण पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान के विष्णु दूत आ गए, भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, जा इसकी रक्षा करो। और जब विष्णु दूत आए और उनके बीच में और यमदूतों के बीच में जब वो संवाद अजामिल ने सुना, तब अजामिल ने अपने जीवन को धिक्कारने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना पूरा जीवन इस विषयों में डालकर मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो ये भगवान के नाम की महिमा है कि हरे को हरे नाम, जब कोई उपाय नहीं चलता तब सब भगवान का नाम चलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद अब गोपियां भगवान के अन्य अवतारों से रिक्वेस्ट करती कि अलग अलग दिशाओं से इस बच्चे की रक्षा करें। तो जो नारायण कवच है, इसमें भी इसी प्रकार ये कवच, ये जो कवच पहनाया जा रहा है भगवान का, भगवान के नामों से कवच पहनाया जा रहा है, तो उसी तरह से हम भक्तों के लिए भगवान ने नारायण कवच रखा है उसमें भागवत में, तो यदि हम उसको धारण करेंगे रोज तो हमें अद्भुत प्रकार का बल मिलेगा। वास्तव में बहुत बलशाली नारायण कवच। शुरुआत षटम स्कंद के अष्टम अध्याय में शुरुआत के 11 श्लोक में धारण करने की विधि है। उसके बाद 12वें से लेकर 42वें श्लोक को उसको पढ़ना है। तो इस तरह से नारायण कवच धारण भक्त लोग कर सकते हैं और उससे उनकी विश्वास कीजिए उससे उनकी सब जगह से रक्षा होगी, कोई भी विपत्ति उन पर नहीं आ सकती, एकदम भगवान के गोद में बैठकर आप सारा कार्य करें। तो वो कहती है कि हे चक्रधारी भगवान, आगे रहकर तुम्हारे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की आगे रहकर रक्षा करें, भगवान हरि गदा से तुम्हारे पीछे से रक्षा करें, भगवान मधुसूदन धनुष बाण से रक्षा करें, भगवान अजन तलवार से तुम्हारी रक्षा करें, और भगवान अजन तलवार से तुम्हारी रक्षा करें, भगवान उरुगाय शंख से चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें, भगवान उपेंद्र तुम्हारी ऊपर से रक्षा करें, गरुड़ तुम्हारी पृथ्वी पर रक्षा करें, भगवान हलधर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, भगवान ऋषिकेश तुम्हारे समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। देखिए हम लोगों को शक्ति चाहिए, जैसे हमारी इंद्रिया जो है हमारी विषयों में लगी हुई है, तो हम लोग हमारे बल से हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान ऋषिकेश। तो यदि हम लोग इस तरह से नारायण कवच के माध्यम से या इस कवच के माध्यम से यदि हम लोग रोज इसका पाठ करेंगे तो हम सब तरह के से हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे इंद्रियों में बल होगा, हमारे जो मन है वो शुद्ध होगा हमेशा। इस हरे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान के अवतारों से कि आप हमारे मेरे मन की रक्षा कीजिए, मेरे अहंकार की रक्षा कीजिए, मेरे भुजाओं की रक्षा कीजिए, तो इस तरह से सुरक्षित रहे। भगवान नारायण तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें, श्वेतदीप के पति तुम्हारे चित्त की रक्षा करें, भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें, भगवान कृष्ण गर्भ तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करें, भगवान परमात्मा तुम्हारे अहंकार की रक्षा करें, भगवान माधव सोते समय तुम्हारी रक्षा करें, भगवान वैकुंठ तुम्हारे यात्रा के समय तुम्हारी रक्षा करें, भगवान लक्ष्मीपति तुम्हारे बैठते वक्त रक्षा करें, भगवान यज्ञ भोक्ता भोजन करते समय तुम्हारी रक्षा करें। तो इस तरह से गोपियों ने प्रेम वश अपने कृष्ण के प्रति प्रेम के वश भगवान गोपियों ने भी कवच लाला को पहना दिया। भगवान से प्रार्थना करते हुए अब समझना चाहिए कि भगवान के नाम की महिमा कैसे कैसा दिव्य है कि भगवान के नामों की रक्षा भगवान के नामों से उसकी रक्षा की जा रही है। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत पढ़कर, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, उसका अध्ययन करके हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कई सारे भक्तों के चरित्र रखे गए, उसमें उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया, क्या क्या कष्ट उन्हें भी झेलने पड़े और कैसे उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, इसकी बात रखी गई है। तो हम लोगों को इन भक्तों के जो दिव्य चरित्र है इससे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। घर पे अर्चन वगैरह होना चाहिए, अर्चन वगैरह की पूजा होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। संबंध जुड़ने से उनकी रोज उनका श्रृंगार करना, रोज आप जो यहाँ पुजारी जन है, पुजारी लोग हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लोग भी भगवान का रोज अभिषेक करते हैं, रोज उनके कपड़े बदलते हैं, उनको उठाते हैं, सुलाते हैं, तो रोज ये सेवा करते करते हमारा भगवान के साथ एक संबंध जुड़ जाता है। जिस तरह से जैसे हम किसी नए भक्त से मिलते हैं, जैसे मित्रता होती है, उनके बारे में जानते हैं, तो जैसे धीरे धीरे किसी को जानते हैं तो हमारा घनिष्ठता बढ़ जाती है भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको रोज मिलते हैं, उनके बारे में रोज सुनते हैं, बात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे घर परिवार का ही देख लीजिए, पति पत्नी बाल बच्चे हैं हमारे, तो हम उनके साथ रहते हैं, रोज खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो इससे क्या होता है, एक हम लोगों में एक स्वाभाविक संबंध बन जाता है, क्योंकि रोज उठना है, रोज खाना है, रोज पीना, साथ ही रहना है, स्वाभाविक संबंध हो जाता है घर परिवार वालों से, आसक्ति हो जाती है। तो वैसी आसक्ति श्री कृष्ण में कैसे होगी, जब श्री कृष्ण की सेवा करेंगे वैसा होगी, जब भगवान को रोज सुबह सुबह उठाएंगे, उनको रोज नहलाएंगे, उनके कपड़े चेंज करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनको रात को सुलाते समय उनके कपड़े चेंज करेंगे, उनको सुलाएंगे, तो इस तरह से भगवान के साथ उस व्यक्ति का संबंध हो जाएगा। इससे और यही सेवा करते करते वो सिद्ध हो जाएगा, और यही सेवा शरीर छूटने के बाद उसकी भगवान के धाम में कंटिन्यू होगी। भगवान के धाम में क्या करना है, भगवान की सेवा। तो भगवान की वहां पर सेवा करनी है, यहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग ओलंपिक्स में जाते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो पहले मैच में प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करके फिर मैदान में उतरते हैं। और हम लोग डायरेक्ट भगवान के धाम में चले जाएंगे सेवा में, नहीं, हमें यहाँ पर पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस होगी, भगवान के अर्चन करके, सेवा करके, सेवा करते 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 हमें हमारा भगवान का संबंध जुड़ जाएगा, और भगवान को भी आपकी आदत पड़ जाएगी सेवा की। आप भगवान के, ऐसा समय आएगा सेवा करते करते कि आप भगवान के बिना जी नहीं पाएंगे और भगवान आपके बिना जी नहीं पाएंगे। और जब भगवान आपके बिना जी नहीं पाएंगे तो आपका शरीर छूट जाएगा, तो भगवान सबसे पहले क्या करेंगे, चलो भैया ये मेरे मेरी इसके बिना मैं अधूरा हूँ, तो मैं इसकी सेवा की, इसकी सेवा करने की मुझे आदत पड़ गई है, सेवा लेने की, भगवान आपको अपने धाम में बुला लेगा। तो ये सिद्धांत है अर्चा वगैरह की सेवा करने के पीछे। तो अब ये सारा, इस तरह से भगवान ने जब भगवान को जब सारे वैदिक मंदिर स्थापित कर दिया, उसके बाद जो गोपियां है वो कहती है कि डाकिनी राक्षसी पुष्पांडा आदि बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा उतना मातृ का अतिशय आदि जितने भी भयानक जो क्या कहते हैं असुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते जितने सारे ग्रह हैं अलग अलग प्रकार के, और यदि कोई पागल भी है उन्माद है पागल है, इन सारे लोगों की एक ही दवा है भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन करने से ये सारे जितने प्रकार की जो डाकिनी है राक्षसी है कुष्मांड बाल उतना इत्यादि जितनी प्रकार की जातियां है इन सब से हम हमें छुटकारा पा सकता है। बस हमें भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। इतना सब करने के बाद अब गोपियों को श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी थी, क्या इतना सब करने के बाद बच्चा सुरक्षित है? बच्चा तो सुरक्षित था लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था बच्चा ठीक ठाक है इसका पता कैसे चलेगा। तो श्री कृष्ण को अपनी माँ के गोद में ले लिया और माँ यशोदा ने उसको अपना स्तनपान कराया, और स्तनपान कराने के बाद अच्छे से दूध पी लिया बच्चे ने और फिर बच्चा सो गया। अब आप स्वस्थ है इसका पता कैसे चलता है? जब अच्छे से खाते हैं और सो जाते हैं तब इससे पता चलता है कि आप ठीक हैं। उस तरह से बच्चा भी खाया अच्छे से और सो गया, इससे गोपियों को आश्वासन हो गया चलो उन्होंने इतना जो कुछ किया था वो सफल हो गया, उतना का जो कुछ भी लगा था वो कर गया। फिर भगवान को कुछ होने हुआ नहीं था लेकिन उनका जो भाव था उनका जो प्रेम था वो सराहनीय। भगवान ब्रज की ब्रज में भगवान की भगवत्ता की कोई कीमत नहीं है, ब्रज में भगवान भगवान नहीं है, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल और केवल नंद बाबा का लड़का है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन धारण कर ले, भगवान श्री कृष्ण काल्य का गमन कर देते, भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी आकर उनकी पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण और भी अन्य कई प्रकार के ऐसी अद्भुत लीला करें जिससे कि वे सारे ब्रजवासी लोग भी मतलब चकरा जाते हैं ये क्या है कौन है लड़का। लेकिन कुछ समय तक वो भ्रम रहता है कि ये कोई स्पेशल लड़का है, लेकिन उसके बाद जब भगवान की हरकतों को देखते हैं ये तो बिल्ली सी लड़ाई जाता है। हमारे महाराज से कथा सुनाते हैं जब भगवान को बांध दिया गया माँ यशोदा ने बांध दिया तब सारे भगवान के जो बाल गोपाल उसमें हल्ला हो गया कि अरे श्री कृष्ण को बांध दिया श्री कृष्ण को बांध दिया, सब जगह न्यूज फैल गई सारे सारे गौर बाल परेशान किसने बांध दिया किसने बांध दिया। तो बलराम जी ने सारा इंफॉर्मेशन सुना दी किसने बांधा है, तो बलराम जी वही ताव में आ गए। बलराम जी बड़े थे श्री कृष्ण से और उनका भाई के नाते एक वात्सल्य था श्री कृष्ण के प्रति, तो उनकी रक्षा करने हेतु कि मेरे होते हुए श्री कृष्ण पर संकट आ गया कौन है वो जिसने कृष्ण को बांध दिया, तो बलराम जी ताव ताव में एकदम संकर्षण और हल्दर के भाव में एकदम दौड़ पड़े घर की तरफ, किसकी हिम्मत हो गई जिस श्री कृष्ण को बांध दे कौन है वो कौन है माई कलाल जो पैदा हो गई श्री कृष्ण को बांधने वाला। और बलराम जी दौड़ पड़े सीधा दौड़ पड़े कृष्ण तुमको किसने बांधा है, माँ ने माँ की इतनी हिम्मत हो गई तेरे को बांध दे मेरे होते हुए। तो बलराम जी अंदर चले गए घर के अंदर, माँ तू जानती है श्री कृष्ण कौन है अरे ये नरसिंह अवतार है ये राम बना था इस जीव यही बामन है अरे सर ये है ये वो है अच्छा और तू कौन है। मैं संकर्षण हूं मैं लक्ष्मण हूं तेरे ब्रजमंडल को मैं ऐसे चूक दूंगा। बोला अच्छा सारे अवतार को मेरा ही घर मिला है और किसी का घर नहीं मिला। तो मां ने उठाई छड़ी बोले बलराम औकात में रहे तो तेरे को भी बांध खड़ा कर दूंगी। तो बलराम जी डर के मारे बाहर आ गए और कृष्ण बोले अरे साले तो बोला था ना कि ये सब माखन चोरी माखन माखन मत खाया कर ये मत किया कर वो मत किया कर कभी सुधरेगा। यार छुड़ाना मुझे, नहीं छुड़ा सकता, और किसी ने बांधा होता तो उसकी वाट लगा देता, लेकिन ये माँ ने बांधना तो कुछ नहीं कर सकता। अगर थोड़ा सा और थोड़ा और प्रेशर डाल तो माँ पर तेरे साथ मुझे ही बांध कर खड़ा कर देगी। इसलिए देख भाई ऐसा ये सब चोरी चारी चोर छोड़ दे, ठीक है, तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी, दिक्कत हो जाएगी तेरी शादी में। तो इस तरह से ब्रज में भगवान की भगवत्ता की कोई कीमत नहीं है, उनके लिए श्री कृष्ण नंदलाला यशोदा का पुत्र है और उनका प्राण सब कुछ है, अपने पुत्र से ज्यादा उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। तो ऐसे ब्रजवासियों की भगवान के प्रति स्नेह का प्रदर्शन सुखदेव गोस्वामी के सम्मुख से हम सबको सुनने मिला। तो कल उतना अब तो नंद महाराज अब तक पहुंचे नहीं है, तो कल सुबह नंद महाराज जी पहुंच जाएंगे, गोकुल पहुंच जाएंगे, और गोकुल पहुंचने के बाद जो करेंगे वो कल सुबह, उतना किस तरह से उतना के शरीर को जलाया जाता है और उतना के शरीर से अगुर सुगंध क्यों आती है, क्या कारण है भाई कि उतना जैसे राक्षसी जिसका खान पान क्या है, खाना था बच्चों का मांस खाना और पीना था बच्चों का रक्त पीना, ऐसी उतना का जब शरीर जलाया गया तब उसमें से अगुर की सुगंध कैसे आई, ये कल। धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री।